Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, अगर खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर काम करेंगे तो खुशी जरूर मिलेगी। खुशी आपके आसपास ही है, बस आपको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। अपने अंदर में खुशी को सदा बरकरार रखिए, तब आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी मुश्किलों का भी आपको झट से सामना करने की शक्ति मिल जाएगी। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधीश शर्मा जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो भाई जी।
थैंक यू वेरी मच
डॉक्टर साहब। हम बात कर रहे हैं रिश्तों की। रिश्तों के अंदर एक ऐसा रिश्ता जिसे यूथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो होता है शादी का रिश्ता। एक ऐसे समय पर, ऐसे पड़ाव पर वो पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें अपने आप के साथ में किसी और व्यक्ति को सदा के लिए अपनी ज़िंदगी में लाना होता है। ऐसे में कई बार बहुत ही कम समय के अंदर उनके बीच में नोकझोंक शुरू हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती हैं। ऐसे में क्या किया जाए?
देखिए, एक तो है कि शादी हो गई, और दूसरा ये भी है कि शादी होने से पहले कई लोग इस पड़ाव से गुजरते हैं जिसमें कि वो हेजिटेंट होते हैं, या उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अभी शादी के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों को शादी के नाम से बहुत घबराहट होती है, कुछ लोग अपने आप को इनएडिक्वेट समझते हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि शादी जो है वो बहुत मुश्किल काम है, वो उसे शायद सही रूप से निभा नहीं पाएंगे, और कुछ को अपनी जो फ्रीडम है बहुत पसंद होती है, उसे छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज़ है तो शुरुआत में ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि दोनों व्यक्ति एक दूसरे को खुशी के साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपने जो अभी बहुत खूबसूरत बात कही थी कि अगर आप खुशी के साथ कुछ करेंगे तो खुशी अपने आप मिल जाएगी, लेकिन अगर आप हेजिटेशन के साथ करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी। उसके बहुत कारण हो सकते हैं। पहला, कई बार ये होता है कि बचपन के कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ प्ले करते हैं, स्पेशली अगर किसी तरह का अब्यूज़ हुआ हो
जी,
तो फिर बाद में शादी के रिश्ते में एक्सपेक्टेशन उनकी ये होती है कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, या उनको डर होता है कि ये चीज़ फिर से एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स को लड़ते देखा है और एक दूसरे को ताने मारते देखा है, तो वो शादी के साथ उस तरह की नेगेटिव चीज़ को इकट्ठा समझते हैं कि शादी के बाद तो झगड़े हो नहीं हैं या होंगे, और मैं उस समय दुख से गुजरूंगा या गुजरूंगी। कई बार ये भी महसूस करते हैं कि पुरानी एक रिलेशनशिप थी जो टूट गई किसी भी कारण से, खुद टूट गई या घर वालों ने तोड़ दी, और इसलिए वो नए व्यक्ति के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते। या मान लीजिए दोनों में बहुत डिफरेंस है, चाहे बुद्धि में डिफरेंस है, एक पढ़ा लिखा है एक पूरा पढ़ा लिखा नहीं है, या दोनों की बैकग्राउंड में बहुत डिफरेंस है, तो उस वजह से भी उस व्यक्ति को एक अंदेशा सा रहता है कि शायद ये चीज़ ठीक ना हो। कई बार अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे अरसे तक मेंटली डिस्टर्ब्ड रहा है और घर वाले कई बार ये भी सोचते हैं कि चलो शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा, ये सच्चाई नहीं है। अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड है तो शादी के बाद वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे एक नई सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करना है। तो इस चीज़ में कभी भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोगों में एडिक्शंस होती हैं और वो एडिक्शंस को छुपाया जाता है मैरिज के वक्त में, और उसके कारण से वो रिश्ते की शुरुआत ही गलत होती है।
करेक्ट।
जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन दूसरे व्यक्ति के लिए तो पूरी हुई नहीं, तो वहाँ से ही प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। कुछ व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा दब्बू हैं या उनकी पर्सनालिटी जो है वो खुल के नहीं आती, उनकी अगर ऐसे किसी व्यक्ति से शादी हो जाए जो कि बहुत उन्मुक्त है, बहुत फ्रीली बात करता है, तो दोनों में एक तरह से मिसमैच हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल या पहले के इश्यूज़ हैं जो कि शादी की शुरुआत से ही मुश्किल पैदा करते हैं। आपस में रिलेशनशिप में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि पहले से चल रही है इसलिए वो रिलेशनशिप की बुनियाद गलत हो जाता है। मान लीजिए इनमें से कुछ नहीं है, बाकी ऐसी चीज सब कुछ ठीक ठाक है, एक दूसरे को जाना पहचाना, वहाँ पर कुछ बाहरी कारण हो जाते हैं। बाहरी कारण कई बार परिवारों में हो जाते हैं, किसी को इज्जत दी गई कि नहीं। जब कोई मान लीजिए फंक्शन हुआ तो उसमें किसी को कितना इज्जत दी गई, बुलाया गया नहीं बुलाया गया, बिठाया गया, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली ये मुद्दों को कई बार बहुत बड़ा बना दिया जाता है। और उसकी वजह से जो एक खूबसूरत रिश्ते हैं वो खूबसूरत रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है। बातें यहीं पर रुक जाती हैं कि मेरी माँ को या मेरे पिता को इज्जत नहीं दी, आगे जाके क्या होगा, तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, फिर वो दूसरे लोग शादी होने से पहले ही उनके रिश्ते में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं उनके दिनों में और उसको तकलीफ पैदा कर सकते हैं। प्लस आज के समय में वी हैव टू बी रियली अवेयर ऑफ द पॉसिबिलिटीज कि कई बार पुराना कोई रिश्ता व्यक्ति छोड़ नहीं पाता और वो रिश्ता भी शादी में उनके साथ चलता है
जी,
या तो असल में और या मन में। तो अगर ऐसा है तो उसमें उस व्यक्ति के निकलने की जरूरत है, तभी कोई दूसरा व्यक्ति उस रिश्ते में आ पाएगा। तो अगर ये सब हम ध्यान रखें तो जो रिश्ते ने आपका साथ पूरी जिंदगी देना है उस रिश्ते की शुरुआत अच्छी होगी। और शुरुआत अच्छी होने का मतलब ये है कि एक दूसरे को समझने की शुरुआत होगी। कई बार एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जैसे ही दो लोग मिले अब सब कुछ एक दूसरे के बारे में जान लें, पहचान लें, विद इन सिक्स मंथ्स कोई टेंशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो और पूरी जिंदगी खुशी से चले। ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ किस्से कहानियों में होता है। एक दूसरे को समझने के लिए समय चाहिए। एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाने में कई फैक्टर्स हैं, विश्वास है, एक दूसरे की बात को समझना है, दूसरे को इज्जत देनी है, अपने बारे में थोड़ा सा खुलना है, दूसरे को मदद देनी है, दूसरे की आकांक्षाओं को आगे रखना है, उसको बाहर वालों के सामने इम्पोर्टेंट महसूस कराना है और उसे ये लगना चाहिए कि वो, खास तौर पे अगर लड़की घर छोड़ के आती है हमारे समाज में, तो उसे ये भी अपना घर लगना चाहिए। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी नई जगह पे आ गया जिसमें उसका अस्तित्व नहीं है। तो वो सब चीज़ें अगर हम करके दे सकते हैं, प्लस अगर लड़का खुद ये महसूस करवा सकता है लड़की को और उसके परिवार वाले भी उसकी मदद कर सकते हैं कि वो यहाँ पे एक इज्जतदार व्यक्ति के रूप में आई है, उस घर का हिस्सा है, चाहे बहुत समय से नहीं है लेकिन बहुत देर के लिए उसकी एक्सेप्टेंस है।
करेक्ट।
तो जब ये होता है तो फिर दोनों तरफ से लेन देन की जो बात आप कह रही थी उसकी शुरुआत होती है और वहां से फिर एक खूबसूरत रिश्ता चालू होता है।
डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं रिश्तों की, कई बार ऐसा देखा गया है कि बात बहुत बड़ी नहीं होती, बात बहुत छोटी सी होती है लेकिन धीरे धीरे वो इतना बड़ा रूप ले लेती है कि हम पूरे के पूरे रिलेशनशिप को ही कड़वा महसूस करने लगते हैं। तो छोटी छोटी गलतियों को किस तरह से नज़रअंदाज किया जाए जिससे कोई भी रिश्ता और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके, क्योंकि बात होती है छोटी सी लेकिन कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि कब वो इतनी बड़ी हो जाती है। ऐसे में क्या किया जाए?
कोई बात बड़ी या छोटी नहीं होती।
अच्छा,
सिर्फ देखने का नजरिया होता। कोई भी जानबूझ के गलती नहीं करता। कुछ चीजें हो जाती हैं, घटनाएं हो जाती हैं जिनको कुछ लोग गलतियां समझते हैं और कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि इसमें गलत क्या है। हर रिश्ते में जब भी कोई झगड़ा होगा तो जहां से वो शुरू हुआ आप देखेंगे कि वो बहुत छोटी सी कोई बात होगी। आपकी साड़ी का कलर कैसा है, यहाँ से शुरुआत हो सकती है और उसके बाद मैंने क्या कहा, आपने क्या कहा, मैंने उसको किस तरह से कहा, आपने उसको कैसे डिफेंड किया, मैंने पुरानी कोई बात की कि नहीं, मैंने फैमिलीज़ की कोई बात की कि नहीं, यहाँ पे बात मुड़ती जाती है।
True.
तो जो बेसिक चीज़ होती है उसे पता नहीं लगता कि दूसरा व्यक्ति किस रूप से ले रहा। और अगर ऐसा हो रहा है बार बार तो इसका मतलब दोनों व्यक्तियों के देखने का नज़रिया अलग है। तो ये अगर समझ के चलें तो शायद कहीं ना कहीं एक दूसरे से इस चीज़ का संवाद हो सकता है कि मेरी ये बातें जो हैं आपको शायद बुरी लगती हैं, शायद इससे पहले कोई आपके एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जिसकी वजह से आप अपने आप को कम्फर्टेबल नहीं महसूस करते, तो अब दूसरे व्यक्ति को उस चीज़ से थोड़ा सा आपके प्रति थ्रेटनिंग नहीं लगेगा, उनको ये लगेगा कि ये मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई बात होती है तो उसको लंबा ना खींचने दे, पहला सबसे इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा, कभी कभी बैठ के सोचने की भी ज़रूरत होती है कि शायद आपने अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी जो कि दूसरे को बुरी इसलिए लगी क्योंकि उसकी बैकग्राउंड में ये बात हो चुकी। किसी को हमने, और ख़ासतौर पे परिवारों में कई बार पर्सनल कमेंट्स बहुत हो जाते हैं।
बिल्कुल,
क्योंकि हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे साथ रह रहा है वो व्यक्ति हमारे लिए, समाज के लिए एक तरह का रोल मॉडल रहे या उसकी इज्जत हो, लेकिन उस इज्जत को दिलाने के लिए हम उसे अपने प्रकार से बदलना चाहते हैं।
ट्रू।
तो वो जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो उस बदलाव का हिस्सा है। उस बदलाव का एक बहुत बड़ा रूप कई बार इस तरह से हो जाता है कि कुछ फैमिलीज में जैसे ही शादी हुई उसका नाम बदल दिया जाता है।
ट्रू।
तो नाम बदलने का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि आज से आप एक नई रूप की जिंदगी जिएंगे और वो जिंदगी हम डिक्टेट करेंगे कि कैसी होगी। कई बार लोग उनको किसी और नाम से पुकारते हैं जो कि उनका अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस नाम के साथ हमारा कुछ कशिश होती है। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत हो जाती है उस समय में कि क्यों उस व्यक्ति को ये बात बुरी लगी, पूछा जा सकता है, या अगर कोई कमेंट बुरा लगा जा तो कहा जा सकता है कि मेरा ये भाव नहीं था पर आपको बुरा लगा, शायद इसका कारण कुछ और है, भाव कुछ और है, नज़रिया कुछ और है। तो दूसरे को भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा।
करेक्ट।
अगर लगे कि कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब दोनों को उस चीज़ को फिर से कहीं ना कहीं बैठ के उस मुद्दे को डिस्कस करना ज़रूरी है। शादी के शुरू के पीरियड में जहाँ तक हो सके बाहर वालों को, और बाहर वालों का मतलब है कोई भी बाहर वाला, पेरेंट्स इंक्लूडेड,
करेक्ट,
अपनी जिंदगी का पूरा हिस्सा ना बनने दें। कई बार हम बाकी लोगों को अपनी जिंदगी जीने का मौका दे देते हैं। तो सारी चीज़ें माँ बाप के हिसाब से, या कई बार लड़कियाँ भी हर समय फ़ोन करके कि आज घर में क्या हुआ, किसने क्या कहा, कैसे कहा, और उसके लिए उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं।
करेक्ट।
तो बाकी लोग आपकी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को नए रूप से नहीं जी रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कई बार कपल्स भूल जाते हैं वो ये है कि अगर पूरे पर्सपेक्टिव में देखें और कोई झगड़ा हुआ भी है तो शायद वो 10 मिनट के लिए होगा, आधे घंटे के लिए होगा, लेकिन हम बाकी 23.5 घंटे या 23 घंटे जो हैं वो भूल जाते हैं कि वो सब सही थे।
करेक्ट।
हफ्ते में एक बार हुआ होगा, एक मुद्दे पे हुआ होगा, हम समझते हैं कि सारी ज़िंदगी ख़राब है। तो अगर हम पूरे बैलेंस तरीके से उस पर्सपेक्टिव को देखें तो आसानी ये हो जाएगी कि आपको लगेगा कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि आप दोनों कई चीज़ों में एक दूसरे के पूरक हैं
जी,
एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हैं। कुछ और इश्यूज इस समय में आते हैं, और ख़ासतौर पे आज के समय में शहरों में परिवार हैं, इकोनॉमिक्स को लेकर, कौन कितना खर्चा कर रहा है, कौन किस तरह की ड्रेस डाल रहा है, ऑफिस से वापस आने का टाइम क्या है, कितना आप दूसरे लोगों को अपने जीवन में आने देते हैं, आपके जो सहकर्मी हैं जो काम कर रहे हैं वो आपके जीवन में कितना आते हैं, आप अपने दोस्तों को उसमें कितना आने देते हैं, पर शायद वो बात किसी और समय।
जरूर, बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। रिश्तों में कहीं ना कहीं हम पुरानी बातों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये एक नई शुरुआत है। जब हम किसी और व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीती बातों को भूल कर अगर वो शुरुआत होगी तो वो ज़रूर सुखद होगी। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल है हमारे ऑडियंस के जो हम आपसे पूछना चाहेंगे।
ज़रूर।
मेरा नाम भाग्यश्री रमेश काले, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ और अभी जस्ट मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। बट मेरे मम्मी पापा जो हैं बोल रहे कि शादी कर लो, और यहाँ तक मैं जानती हूँ कि मेरी उम्र की जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सब पहले करियर करना चाहती है, अपने पैरों पे मतलब खड़े होना चाहते हैं, सेटल होना चाहती है और फिर शादी करना चाहती है। और मेरा भी खुद का यही मतलब डिसीजन है कि मैं पहले करियर करूँगी और फिर उसके बाद शादी करना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ?
मेरा नाम प्रमोद विठल जंगम है और मैं मुंबई में भांडुप में रहने वाला हूँ। मैं एक फार्मास्यूटिकल में काम कर रहा हूँ। ओके, सो लास्ट 10 साल से मैं एक फार्मास्यूटिकल में काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से जो मेरे ऊपर एक प्रेशर बनते जा रहा है, जो सेल्स और टारगेट का प्रेशर, तो उसकी वजह से मैं ना अपना फैमिली लाइफ और ना प्रोफेशनल लाइफ, सो दोनों मैनेज नहीं हो पा रहा है मेरा। ओके, तो उसकी वजह से ना सेल्स टारगेट हो रहा है, तो सेल्स टारगेट न होने की वजह से जो कंपनी के मैनेजर्स है उनका प्रेशर और बढ़ रहा है, और वहाँ पे मेरा प्रोफेशन ठीक नहीं चल रहा है, इसके लिए मेरा फैमिली पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरी फैमिली लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब है। तो आप प्लीज़ मुझे गाइड करेंगे तो इसको मैं कैसे मैनेज करूँ?
इनका सवाल कुछ इस प्रकार है कि ये अभी अभी ग्रेजुएशन इन्होंने ख़त्म किया है और अभी उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो शादी कर लें, लेकिन वो खुद ऐसे देख रही है कि आसपास उनकी जो हम उम्र की लड़कियां हैं वो सभी अपने करियर को सेट करने में लगी हैं, तो ऐसे में ये चाहती हैं कि वो भी करियर सेट करें लेकिन उनके पेरेंट्स उसे अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें? और दूसरा, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं, ये इनके ऑफिस में बहुत ज़्यादा डेडलाइंस मीट करने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बहुत हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है, लेकिन ऐसे में वो अपनी फैमिली के साथ में बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, घर में टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से उनके रिश्तों में भी खींच सी आती जा रही है, तो ऐसे में क्या किया जाए?
देखिए, ये जो शादी का समय है ये जनरेशन टू जनरेशन एक्चुअली बदलता है। उनके पेरेंट्स अपने समय के हिसाब से सोच रहे हैं कि उनकी शायद एक खास उम्र में शादी हो गई, क्योंकि उस समय खासतौर पर लड़कियाँ प्रोफेशन में उतना नहीं जाती थी, या अगर करती भी थी तो वो सिर्फ एक अच्छी बहू के रूप में उन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन उसको सीरियस कैरियर बनाने के लिए नहीं की थी।
करेक्ट।
पिछले 20-25 वर्षों में सही रूप से लड़कियां भी चाहती हैं कि वो भी काम करें, क्योंकि काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, काम से आपको एक आइडेंटिटी भी मिलती है, आपका एक वजूद बनता है जो कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो आमतौर पे 18-19 साल में पूरा नहीं होता, उसके लिए कुछ और वर्ष लगते हैं। तो इनका सोचना बिल्कुल सही है। पेरेंट्स की एंजाइटी कई तरह की होती है। पेरेंट्स की एंजाइटी होती है कि कोई रिलेशनशिप ना हो जाए और उसकी वजह से शायद जिस तरह का घर पेरेंट्स चाहते हैं वो ना हो पाए शादी में, या कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि उसकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो सही लड़का शादी के लिए नहीं मिलेगा, या कई बार ये भी सोचते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई तो शायद परिवार को अच्छे रूप में नहीं चला पाएगी। ज़रूरी नहीं है, अगर आप अपने बच्चों के साथ अपने इश्यूज सामने रख के उनके साथ बात कर सकते हैं और इसी समय में वो अपने प्रोफेशन को पूरी तरह से पा सकती हैं, 10 साल बाद नहीं, लेकिन अगर वो उन्होंने पूरा नहीं किया अपना प्रोफेशन तो उन्हें हमेशा ये लगेगा कि मुझ में कुछ कमी है और इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहेगी। तो पेरेंट्स को इनके साथ बात कर लेनी चाहिए, उनको अपने कंसर्न्स बता देने चाहिए ताकि ये भी उन कंसर्न्स का ध्यान रख सकें, और साथ ही साथ जब इनका कैरियर पूरा हो जाए और ये अपने आप को सक्षम महसूस करेंगी तो शादी में भी ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और उसकी वजह से उस मैरिज के पूरा सही रूप से चलने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, इनके खुश रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
करेक्ट।
देखिए, जो प्रोफेशन और फैमिली के बीच का बैलेंस है वो कई बार आज के समय में रखना मुश्किल हो जाता है। उसका कारण यह है कि फैमिली को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन प्रोफेशन में हम सोचते हैं कि हम इनसिक्योर हैं और अगर हमने नहीं किया तो शायद मेरी जॉब चली जाए या मुझे प्रमोशंस ना मिले। तो फैमिली लाइफ को हम धीरे 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 साइड में करते रहते हैं, निग्लेक्ट करते रहते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ का एक विंडो पीरियड होता है। खाने का भी होता है, अगर आप उसको सही टाइम पे नहीं खाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। उसी तरह से रिश्तों का भी होता है, अगर रिश्ते धीरे 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 टूटने लगते हैं तो बाद में उनको रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो इनको कुछ समय अपनी फैमिली के लिए निकालना ज़रूरी है, और कई बार सिर्फ समय नहीं लेकिन उसके बारे में सोच ही काफ़ी रहती है। प्रैक्टिकल रूप से अगर ये चाहें तो बीच बीच में फ़ोन करके उनका हाल पूछ सकते हैं, अपने बॉस से बात कर सकते हैं कि कम से कम 2 बार महीने में, अगर हर हफ्ते नहीं तो मुझे अपनी फैमिली के लिए चाहिए। और अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई भी बॉस इनको लूज़ नहीं करना चाहेगा।
करेक्ट।
लेकिन आपको अपनी बात को कहना ज़रूरी है कि मेरे लिए मेरा परिवार भी ज़रूरी है। और इंसिडेंटली ये भी समझना इनके लिए ज़रूरी है कि परिवार सिर्फ बोझ नहीं है जिसके के लिए आपको समय निकालना है, परिवार आपको खुशी भी देता है, परिवार आपको सिक्योरिटी भी देता है, परिवार की वजह से ही काम करने की इच्छा होती है, वरना पैसे कमा के किसके ऊपर खर्चे। तो वो भी ज़रूरी है, और स्पेशली अगर मान लीजिए परिवार में सिर्फ पत्नी ही नहीं है, बच्चे भी हैं, तो उन बच्चों को भी समय देना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को सिंगल पेरेंटिंग नहीं चाहिए, उनको हो सके तो दोनों पेरेंट्स का प्यार भी चाहिए, समय भी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो कि सिर्फ एक मेल पेरेंट ही समझा सकता है, कुछ चीज़ें फीमेल पेरेंट ही दे सकती है, तो उसको पूरक करना भी इनके लिए ज़रूरी है
जी।
और अगर कोई जॉब है जिसकी वजह से ये फैमिली को बिल्कुल समय नहीं दे पा रहे हैं और ये लगातार हो रहा है, तो इन्हें कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और ऐसी किसी जगह के बारे में सोचना पड़ेगा जहाँ इनको खुशी तो मिले। इस समय तो एक सिर्फ काम में मशीन के रूप में चल रहा है, वो इनकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, परिवार की बॉन्डिंग के लिए भी अच्छा नहीं है, और इनके फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है।
डॉक्टर साहब, बिल्कुल इतनी सारी बातें आज हमने सीखी, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अगर हमें अपनी रिलेशनशिप्स में मिठास भरनी है तो कहीं ना कहीं हमें दूसरे व्यक्ति की पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कोई भी तरीके का करियर हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी रिलेशनशिप्स को भी समय देने की ज़रूरत है। खाली करियर ओरिएंटेड होने से हमें होलसम खुशी कभी नहीं मिलेगी। अगर हम परिवार को और काम को साथ लेकर चलें तो ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी सुखद हो जाएगी
जी।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो।
थैंक यू वेरी मच।
ओम शांति।
ओम शांति।
आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि अगर हम जिंदगी में कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए लेकिन हमें अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए, और हमारे रूट्स होते हैं वो रिश्ते जिनके साथ हम रोज़ जी रहे होते हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो, या दुनिया में कोई भी रिश्ता हो, रिश्ते बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। एज अ यूथ हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम अपने स्पाउस को कितना समय दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें उनके साथ समय बहुत ज़्यादा बिताना है, अगर हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो हम महसूस करेंगे कि हमारे रिश्ते और भी ज़्यादा परिपक्व हो जाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।